पुकारते हुए और इस तरह से ये लोग भी पुकारते हुए उसकी रक्षा करते हुए और उस पार में वृंदावन भूमि आई। जहां हम लोग बद्री का पेड़ देखा है परिक्रमा में, बद्री का जहां से हम महारावण से चलेंगे तो पार करके इधर में आएंगे, वहां पर कोई गांव है सब नहीं, सब याद नहीं, इधर ही में बहुत से गांव है, उन गांव को पार करके वहां आए वृंदावन में। उस तरह वृंदावन की जो अपूर्व शोभा देखी, कृष्ण ने कहा कि भैया हम लोग कहां जा रहे हैं? वृंदावन भैया। भैया कब अपने घर का बुलाओ? तो भैया ने कहा कि बेटा घर साफ चल रहा है। घर कहां चल रहा है भैया? चल रहा है कि नहीं? घर घर ही साफ नहीं चल रहा है। इस तरह से उनको बतलाते और वार्तालाप करते हुए चल रहे हैं। चलते चलते सच्ची करांगे जहां अभी हम वृंदावन देखते हैं, यहां पर निधिवन है, जहां पर सेवा कुंज है, जहां पर वो यहां पर आत्मा बंसी भर है, ये सब घोर जंगल था, आदमियों के प्रवेश लायक नहीं था। नंद बाबा ही अपने इस मंडली के साथ में पहले उधर से होकर के और तब घर में आए शक्तिकरा। यहां वर्तमान शक्ति शक्तिकरा गांव, शक्तिकरा गांव, और वहां पर उन्होंने चक्रा का अर्धचंद्रा का व्यूह में गाड़ियों को खड़ी कर दी, आदमी सब उतरे, कृष्ण को उतारे, बड़े बड़े कांटे बबुल और वृक्षों को काटकर, झाड़ियों को काटकर रहने लायक भवन बनाया और गाड़ियों के पीछे अर्धचक्रा का उन कांटों को रख दिया गया, ये पीछे की तरफ से कोई ना आए सावधान, और आगे की तरफ में साफ सुथरा रखा गया सामने की तरफ वृंदावन की ओर। गायों के लिए भी इसी प्रकार से बाड़ बना दिए गए, कांटों से ही घेर करके जंगल की लकड़ियों को काट करके गाड़ करके और बना दिया गया और उसमें गायों को रख दिया गया। अब शाम हो आई है, गाड़ी में ही घर घरों में ही वहीं पर सोए, गायों को दुहा गया, खाने के लिए तो गायों से दूध ही उनके लिए पर्याप्त है, बस ये सब हुआ। अब वहीं पर कृष्ण का धीरे धीरे मन लग गया, अनुरूप पाटली में जमुना और पाटली में खेलने के लिए जंगल सुंदर सुंदर मो क्वायल और इतने पशु पक्षी वहां पर चल जा रहे हैं। अब कृष्ण अब कुछ बदल रहे हैं, गोकुल में चोरी करते थे, सबके लोगों के मन को भी और कभी मक्खन इत्यादि चोरी कर, बहुत चंचल स्वभाव के थे, स्वभाव चंचलता बदल नहीं सकता, समाप्त नहीं हो सकता किंतु बदल सकता है। एक चोर है नामी चोर, साधु हो गया नारद जी की कृपा से या किसी की कृपा से, तो साधु चोर जब चोर जब साधु बन गया तो चोरी करने का स्वभाव जाएगा कहां, किंतु हृदय में चोरी करने का भाव नहीं, तो वो क्या करता है, साधु संत लोग रहते हैं उनकी लंगोटी को वहां, उनकी लंगोटी को वहां कर देगा, और उनका लोटा इनके यहां मंगल महाराज जी की लंगोटी उधर में और उनकी उनका चप्पल उधर में कर देता, जो वो ले लिया तो वो ले लिया, कौन ले लिया, क्या ले लिया, बस जब मैं लगा तो कर दिया, अरे भाई मैंने की मेरा तो स्वभाव जाता नहीं। तो इस तरह से चोरी का स्वभाव तो स्वभाव तो गया खत्म, किंतु चोरी का जो अभ्यास है वो सभी नहीं। तो कृष्ण अब चंचल से घरों में जाते, बच्चों को चिमटी काटना, चुरा करके मक्खन खाना बंदरों को देना और नक्षत्र कम का काम करते थे। अब वो टाइम चलता उनके पैरों में अब कुछ जोर आ गया, उनके पैर कैसे हो गए, हाथी की सूंड की भांति ऊपर से नीचे अथवा केले के खंभे के समान नीचे जैसा होता है और ऊपर में पतला नीचे में मोटा केले के खंभे, ऐसे ही मानव बिना दांत का सुंदर उनके पैर और तक्षक भी कुछ चौड़ा हो गया, कुछ मुख में शांति आप आने लग गई किंतु चंचौता गए नहीं। अब दौड़ करके बाहर जाते, बच्चों से लड़ उधर जाते, उनके गले पकड़ लेते, क्रीड़ा में अब आसक्त हो गए गोपों के साथ में, बच्चों के साथ में तरह तरह की क्रीड़ा करते और ऐसी क्रीड़ा करते करते हो जाते खाने पीने और मैया के प्यार का भी सुख नहीं रहती, ऐसे ये चल। किंतु अब वो भाव नहीं, मक्खन चोरी और ये सब कुछ छोड़ना, ये सब कुछ छूट गया धीरे धीरे। कुछ लज्जा की अब मुखारविंद बने, कुछ अब लज्जा की भी प्रकट में मैया अपने हाथों से उनको पीतांबर पहनाती, अब नंगे रहने में उनको कुछ थोड़ी सी लज्जा आने लगी। अब पहनाते समय पीतांबर मांग लेते और खुद पहनते, किंतु आधा नंगे रहते और आधा देख करके फिर मुस्कुराते और लज्जित हो जाते। मैया फिर से पहना देती उनको, जैसे बच्चों का होता है ठीक ऐसे ही नर लीला के अनुरूप सब कामों को वो करने लगे और गोपियां देख देख करके और गोप लोग निहाल हो जाते इन लीलाओं को। इस लीला में न जाने कौन सी माधुरी, जो देवता लोग भी मनुष्यों का उद्धार करके और देवियां भी स्त्रियों का रूप बना करके नंद भाव में इन सब चीजों को देखने के लिए आती है। अब एक दिन वो मचल उठे, मैया मैं गाय चारू तू गाय चाहे शरीर में तो तनिक शक्ति नहीं, कितनी गली में दौड़ेंगी, किसने मार दिया, किसने कुछ कर दिया, अभी गाय चाहे अरे मेरे अंदर में अब तो शक्ति आ गई है, मैं नंद मेहर जसोदा मेहर महल और ये का महरी, मैं नंद का पुत्र हूं, मैं जरूर गाय चराऊंगा। देखो ये कह करके तीन चार सांड बैठे थे, उन सबको खड़ा करके और उनके तीन चारों को अपने पीतांबर में सिंह बांध दिया और फेंकने लगे, किस कूद करके किसी के गर्दन पर चढ़ गए, किसी की पकड़ करके हिला रहे, देखो मैं कितना बलवान हूं। उन्होंने कहा कि अभी तो बलदेव जैसे तुम्हारी चोटी भी मोटी नहीं हुई। कहेंगे थे क्यों, अच्छा इसलिए कि तुम खाता नहीं है, रोटी और मक्खन खाएगा तब तो तुम मोटा होगा, सब गैया चराना ठीक है। और कहते हैं कि कब पड़ेगी मैया, कब पड़ेगी चोटी, और जब बड़ा हो जाऊंगा तो गैया चराने जाऊंगा। इस तरह से मैं गाय चराऊं जय हूं भैया, अब तो मैं गाय चराने का मैं बहुत बड़ा हो गया है, अब तो मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। तू कह महरी नंद बाबा को बड़ो भयों में करी, अब तो मैं बड़ा हो गया नंद वो काम है, अब तुम ब्रज की रानी है, तुम्हारा लड़का होकर के अब ब्रज में और बड़ा हो गया शक्ति भी हो गई और मैं कब जरूर गैया चराने जाऊंगा, कैसे जाएगा तू, अभी तू कैसे जाएगा अकेले, नहीं सीधा माल है हाथ का हाथ और सब उधर संग लय हूं सीधा, तू दान सुदान पशुदान कितने हुए दान दान स्त्रीदान पशु
सुदान
सुदान
पशुदान
पशुदान
इसको
कृष्ण लहंग अर्जुन इत्यादि सब कथाओं को लेकर और हल्दर हल्दर भैया तुम डर की बात नहीं क्यों हमको भाग्य की है उसमें भी डर की कोई बात नहीं भाई भाग कांवर कर ले भूख लगे तो खाई हूं सूरदास कहां कराने वाले थे उत्तर भारत के कहते हैं कि ये पार्टी है मथुरा का पार्टी एक गांव है क्या है वो रेणु रुनकता
रुनकता
वहीं पर सूरदास की कुछ जमीन है तो वहीं के रहने वाले तो यहां पर हमें वो कहते हैं क्या यदि बंगाली को दिखता है दही भात की कांवर लेकर के चलता तो लोग आते हैं ये बंगाली है इसलिए लिख दिया दही भात ये तुम यहां सूरदास नहीं कह रहे हैं लेकर के काम कर लेगा किंतु सूरदास भाव मित्र से देकर के कह रहे हैं कि उसमें बहुत यहाँ पर खूब चावल होगा और लोग चावल और दही भी खा लेते इसलिए दही भात काम और भर गई हूँ कांवर में भर भर करके दही और भात लूंगा और भूख ले तो खाई हूँ जब जब भूख लगेगी तब हम खाएंगे बल्कि बटकी सी तब छैया और बंसी भर वहां से खेलने के लिए बंसी बढ़ जाएंगे हम यमुना के किनारे उसकी सुशीतल छाया बड़ी घनी और बड़ी लंबी चौड़ी है वृंदावन में तीन चार वर्ष प्रसिद्ध हैं एक बंसी भर
हांडी
भर
श्रृंगार भट
श्रृंगार भट
अक्षय भट
अक्षय भट और
जावट
जावट और फिर कदम वो कदम बढ़ ऐसे वट में बहुत से प्रसिद्ध वट हैं शीतल छाया में पशु पक्षी लाखों वहां पर रहते हैं बंदर भी वहां रहते हैं सब प्रकार के पक्षी उसमें आते रहते हैं लोग कहते हैं जैसे जैसे गोवर्धन कितनी योजन लंबे थे ये वृक्ष की डालियां भी एक एक योजन लंबी थी और आकाश में नजर एक योजन ऊपर में ऐसा विशाल होता उसकी सूची कल छाया में जिसने कोटि कोटि गोपियों के साथ में राज किया वो बंसी पर कैसा होगा उसकी छाया में सखाओं के साथ में वो चार करते लिए जाते तो कह रहे हैं उसी में हम सुख से खेलेंगे परमानंद दास खेलो जाए जमुस्त नहीं यमुना के तट पर स्नान करेंगे वहां पर खेलेंगे परमानंद दास कहते हैं जो हो मैं भी आपका कथा बन जाऊं आप कृपा करके मुझे कथा बना लेंगे और मैं भी आपके साथ में यमुना में स्नान करके और बंसी बर की छाया में वहां पर खेलूंगा और आदेश देंगे तो भैयों को लौटा ला इसलिए नंद कुंभ कुंभन दास सूरदास इत्यादि जो अष्ट शब्द के कवि हैं या तो कथा है या बात को नरक के ये सब लोग बात रोम रोम जसोदा जी का परिपूर्ण गया आनंद से देखा जाए सचमुच में कृष्ण बड़ा हो गया मानता नहीं है कभी नंद बाबा के पास में कभी इनके पास में कभी कभी थोड़ी पकड़ करके और काका जैसे मुझे आदेश नंद बाबा ने गर्गाचार्य को या सामिल ऋषि को बुलाया शुभ मुहूर्त दिख रहा है और सब लोगों ने निर्णय किया कि गायें अभी नहीं अभी बछड़े चराने के लिए भी सुख और गांव के घर के पास में ही ये चराया है कहीं दूर में नहीं शुभ मुहूर्त गोपाष्टमी का निकला और उसी दिन नंद बाबा ने लाखों लाखों गायों का दान किया कृष्ण का गोपाल वेश बनाया मोर के पंख लगा दिए चूड़ा को बांध दिया लकिया हाथ में दे दी और फूलों के श्रृंगार कर लिए। यशोदा जी बार बार कन्हैया को बलैया ले रही है और छोड़ती नहीं है, मुहूर्त निकला जा रहा है। इसके बाद में यशोदा जी दूर तक पहुंचाने के लिए जाती है, नंद बाबा जाते हैं, बहुत शपथ देते हैं लौटाने के लिए, किंतु लौटती नहीं जाती है। थोड़ी देर के बाद फिर दौड़ करके पहुंच जाती है यहां, कहती कि यहीं पर पास में चढ़ा करके लौट आने। उस दिन उन्होंने सुंदर सुंदर जो जोड़ी जूते मंगाए और सुंदर छत्र मंगाया और कहा कि तुम इस जूते को पहन लेना और छत्र को लेकर के गाय को चराने के लिए जाए। पहले उन्होंने बलदेव जी को चढ़ा, कृष्ण को कहा, कृष्ण ने कहा कि ये हमारी आराध्य देवियां हैं, हमारे वंश परंपरा से ये पूज्य हैं, इसलिए प्रत्येक गायों के लिए जूतियां बना दो और छत्र भी लगा दो और सब मेरे लिए दे दो। समय आजकल तो पिता के लिए जूता नहीं बनता, भले ही ससुर के लिए बन जाए कोई बात नहीं, मैया के लिए कुछ नहीं बनता। शादी को बुला रहे हैं और सास को भी बुला रहे हैं, उनकी खूब भक्ति सेवा करेंगे, उनके लिए गैया का दूध भी नहीं जुटेगा और उन लोगों के लिए खूब जुटेगा।
ये माँ बाप भी तो दूसरे किसी का सास ससुर होंगे तो उन लोग बुला।
अब वो जमाना बदल गया है, पूज्य के लिए कोई दृष्टि नहीं। आजकल गायों का दूध दिखने पर भी नहीं दिखता है, आवाज देते हैं वाले लोग ये दूध लो, किंतु वो दूध में भी डर लगता है, जैसे ये पानी में दूध मिला गया कि दूध में पानी मिलाया गया है। आजकल दूध में पानी नहीं मिलाया जाता, पानी में दूध मिलाते हैं, इसलिए जान हमें पर भी नहीं। यदि घर में गैया पाले तो हो सकता है, किंतु गैया का गोबर काटना, गैया की सेवा करना, उनको पूज्य देवता मान करके करना, ये बहुत कम है। उस दिन गोबर बंद सार्थक होगा, और नहीं तो गैया छोड़ दिया, किसी ने मुख में डंडा मारा, किसी ने कुछ किया, कट्टी मिट्टी कागज को खा रही है और फिर घर में उसको धुआं जा रहा है, रात में अपने घर में भी नहीं रखती। ये सब यदि सेवा करनी है तो कृष्ण के अनुसार में। अभी भी कुछ लोग हैं जो गायों की सेवा करते हैं, दूध दे और न दे उनकी सेवा करते हैं, उनकी कामना करते हैं, ठीक है सामने। ये भी भजन का एक अंग माना जा सकता है, जो बसर से वो भजन करे तो और सबको गाय गृहस्थों को यदि संभव हो, किंतु शहरों में आजकल सब जगह संभव नहीं होता। सर जैसा भी हो, जूती उन्होंने नहीं लिए और छत्र भी नहीं लिए, क्योंकि इनकी आराध्य है और बच्चनों से चराने के लिए चल सा ब्रज उनके दर्शनों के लिए। कृष्ण और बलदेव को वो बेच में देखकर और उनके सखाओं को देखकर भी मुक्त हो गया, कोई छोड़ना न चाहे। तो छोटी अपनी बालिकाएं अभी जिक्र नहीं उनका है, क्यों नहीं आए? अभी छोटी छोटी, कृष्ण से कितनी छोटी है, कृष्ण यदि 14 वर्ष के माने जाए तो उनको 12.5 वर्ष 13 वर्ष का माना जाए। इसलिए कृष्ण से वो 2.5 वर्ष छोटी है, तो कृष्ण जब वहां से गोकुल से चले हैं 3.5 वर्ष से, तो उस समय वो बच्चियां कितनी बड़ी बड़ी होंगी,
तो 1 साल के 6 महीना से,
इसलिए अभी तक वर्णन नहीं आया, वो प्रतीक्षा कर रही है, धीरे धीरे वो भी बड़ी होने लग गई, वो भी दौड़ करके आ रही है, कृष्ण दूर से दर्शन करती है और दूर हो जाती है। उनका तो खाई है ना बहुत पहले से, तो अभी पूर्वराग अभी नहीं आया, अभी स्वच्छ रीति है, जिसको कहते हैं स्वच्छा रोती, स्वच्छा रति मैंने कैसी माताओं के साथ में कृष्ण को देखा, मैं गोदी में लिए थे, तो वो क्या करती है, मेरी गोदी में इच्छा होती है बच्चे को गोद में ले ले कृष्ण, कभी 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 विवाह व्यक्ति में ना बनाया है गांव में विवाह हुआ, घर एक बुढ़िया ले लिया और एक बुढ़वा ले लिया, एक गुट्टा एक गुट्टी, बुढ़िया गुट्टा बस मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन ले लिए बना लिए, कोई हड़िया भी बना ली, कोई कड़ाही बना ली, कोई कुछ बना लिया और मिट्टी के कुएं बन रहे हैं, पुड़िया बन रही है, धूल के घर बन गए और विवाह सजाने लगती। जिस चीज को देखते हैं ऐसा ही अनुसरण होने लगता है, इसको कहते हैं स्वच्छता अभिस्वच्छता। अब वो धीरे धीरे कृष्ण के जब गोचार के लिए जाते हैं तो ये भी देखने के लिए बहुत ही सुंदर प्रतिबुल लगता है, इसलिए ये भी चल रही है। जसोदा माँ और नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासी हैं, दूर तक पहुंचाने पर जब नहीं दौड़ते तो कृष्ण किस चीज सुगंध खाकर कहते मैया अब तुम बच जाए, सिर की सौगंध लगाने से बस वही पहुंच गया। और इसके बाद में कृष्ण गोचारण करने के लिए चल पड़ते हैं, बड़ी भंगिमा के साथ में चलते हैं, बन में चले गए, वहां पर तरह तरह के पेड़ खेलते हैं, कौन से ही देखा पेड़ की डाल पर लंगूर बैठा है, पूंछ नीचे झूल रही और झट धीरे से जाकर के पीछे से और झट पकड़ और वो खुदा और कुछ करके दूसरी डाल पर गया तो इसके साथ ही साथ में इसी तरह से खेल खेल रहे हैं। कभी मयूरों की बोली का अनुसरण कर रहे हैं, कभी मेढक जैसे चलते हैं वैसे चल रहे हैं, कभी कुछ समस्त पशु पक्षियों की लीला का अनुसरण करते हुए परस्पर खेल। शाम को होती ब्रज में से आते मैया बलैया लेती आरती उतारती, खेल झूल में कहीं उनको कट फट गया, क्या हुआ नहीं हुआ, कांटों में कहीं लग गया और इसको देखती संभाल और काफी जो बेटा तुम भूल मत जाना। यशोदा जी की एक धात्री थी उसका नाम किलिम्बा किलिम्बा किलिम्बा, उसने तपस्या की हमको एक ऐसा पुत्र हो जो सब समय कृष्ण की रक्षा कर, इसलिए उसके पुत्र एक था उसका नाम
भद्रसेन
भद्रसेन था, बहुत ही लंबा चौड़ा और बड़ी बलदेव जी के उम्र का था, वो कृष्ण के साथ में सप्तमें जाया करता और उनकी सप्तमें प्राणों की पुतली की भांति उनकी रक्षा करता। धीरे धीरे कृष्ण की उम्र बढ़ने लगी चलने लगी। एक दिन की बात है त्रिनाथपुर मारा गया है, अब कंस को बड़ी फिक्र हुई कैसे उस बच्चे को मारा गया, विपत्तियां रिन्यूअल ऑफ प्रेम है, लॉ प्रेम को विपत्ति बढ़ा, कोई भी विपत्ति मनुष्य को उन्नत के शिखर पर चढ़ाती है, यदि विपत्तियां ना रहे कोई भी उन्नत नहीं हो सकता, यदि बांध न बने नदियों के ऊपर में तो पानी ठीक होकर ऊपर में जाए उसे कोई काम न हो, तो इसलिए विपत्तियों को हम लोग बुरी के रूप में हम लोग ग्रहण न करें, उन्नति का कारण है। तो ये विपत्तियां आती हैं कृष्ण को और भक्तों को प्रकट करने के लिए जगत में और कृष्ण के प्रति लोगों का स्नेह परिवासियों का स्नेह बढ़ाने के लिए। कंस बड़ी चिंता में है, दरबार हो रहा है, जिसको मैंने ब्रज भेजा कोई भी लौट करके नहीं आया, कोई ऐसा माई का लाल है जो सोने के थाल में मैं पान रख रहा हूं उसको उठा ले दिया और उस नंद के पुत्र को जो वसुदेव का ही पुत्र है अभिक्षिप्त करके नंद के घर में पालित और पोषित हो रहा है। उनके दोनों लड़कों को मारकर से चला है। वहीं पर एक असुर था, वो बछड़े का रूप में रहा। पूर्व जन्म में मरु नाम का एक कोई असुर था, उसका पुत्र था। वो उसका नाम था ध्रुमिल, ध्रुमिल दैत्य। बड़ा नटखट बदमाश था। वो ऋषियों के आश्रम में बड़ा तंग किया करता था। एक दिन घूमते घामते वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा। अरुंधति और वशिष्ठ जी वहां पर थे, अपना भजन कर रहे। सब समय इनके पास में कपिला गाय रहती थी और जो कुछ होता विश्वामित्र जैसे ऋषि का भी उन्होंने आदर प्राप्त किया और बड़े बड़े महाराजाओं को भी उन्होंने अपने आश्रम में टिकाया। उनको खाने पीने रहने सब की व्यवस्था की गाय के कारण। इन्हीं के लिए उन पर बड़े संकट भी आए, किंतु इस गाय ने उनकी रक्षा की। ये ध्रुव दैत्य आया और देखा, जब चाहते हैं तभी दूध उनको मिल जाता है, उसी से हवन यज्ञ इत्यादि घी का काम सब उससे होता है। जब जरूरत होता है अतिथियों का स्वागत करते हैं। ये गाय को हरण कर लेते हैं, कभी वो बच्चा नहीं देती थी गाय, बिना बच्चे की ही गाय, किंतु मनोवांछित समस्त प्रकार की चीजों को देने वाली। दुखा जी इस ऋषि के पास न करके क्या करेगी, ये हमारे पास में आए, जब चाहे खूब दूध दिए। वशिष्ठ के यहां वो गाय थी किस लिए, भगवत सेवा के लिए, यज्ञ के लिए, अतिथियों के सत्कार के लिए, परोपकार के लिए थी। और ये किस लिए जा रहा है, अपने सुख के लिए, भोग के लिए जा रहा है, संतों के चीजों में और असुरों के चीजों में यही पाप होता है। संतों का धन धन खराब नहीं है, धन का व्यवहार और अपव्यवहार ही अच्छा या बुरा है। कोई भी चीज जगत में कोई चीज बुरी नहीं है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग ही खराब या अच्छा है। हम लोगों के हृदय में प्रीति है, ये खराब नहीं है, बहुत ही एक सुंदर अनमोल चीज है। यदि इसको भगवान की सेवा में लगा दिया, संतों की सेवा में लगा दिया तो काम। तो जिन लोगों गृहस्थों का धन साधु संतों की सेवा के लिए होता है, भगवान के भक्ति का प्रचार करने के लिए होता है, दूसरों के उपकार के लिए होता है, तब तो वो सोने में सुहागा। अन्यथा वही धन उनको अनर्थ के रूप में, अर्थ नहीं, अनर्थ के रूप में बर्बाद करके उसको संसार चक्र में उसे फेंक देगा, नरक में ले जाएगा। इसलिए अर्थ को खूब अच्छी तरह से रखना चाहिए और उसका सदुपयोग भी होना चाहिए। कोई भी चीज वो अपने अपने लिए जो करते हैं वो चोर है। अपने लिए जो रसोई बनाते हैं ना, गीता में कहते हैं वो चोर है, अपने लिए नहीं। और जिनको अपना मानते हैं केवल उन्हीं के लिए नहीं, बिना भेदभाव, विशेष करके संतों को और भगवान को अपना सब बंधु मान करके उनके लिए सबक हैं। कहीं कहीं पर परोपकार भी साधारण लोगों के लिए महानरक का और बंधन का कारण बन जाता है। जैसे एक चोर ने चोरी की और उसका पैर में चोट लग गई, मर्डर करके आया है और पैर में गोली लग गई, और कहीं पर एक सज्जन व्यक्ति ने अस्पताल बनाया और उसमें आकर के उसकी चिकित्सा हुई, अच्छा हो गया। अब वो क्या करेगा, डकैती करेगा, मारेगा, फिर अब करेगा। अब वो जो अच्छा किया इसका अज्ञात रूप में ही फल किसको मिलेगा। इसलिए इन चीजों को समझना है। जबकि भरत महाराज जैसे एक व्यक्ति, घर बार स्त्री पुत्र परिवार मर्वत प्रत्याग करके वन में आए हैं और हिरण के बच्चे को बचाने के लिए परोपकार की भावना से उसको डूबते हुए उसको बचा करके रख लिया है। उनका तीन जन्म ही बर्बाद होगा। एक अच्छे उपकार, ये तो शुद्ध उपकार था, अपने भी लिए किया, समाज के लिए किया, एक पशु के लिए किया, किंतु वो तीन जन्मों के लिए दूर गए। और यदि उनको भाव उत्पन्न नहीं हुआ होता, साधुओं का कर्म नहीं हुआ होता, तो क्या होता? वो
जन्म
जन्मांतर चला, जन्म जन्मांतर जन्म कितना निकल जाता, कोई भी ठीक नहीं। उनका ही नहीं, मृग महाराज बड़े उपकारी थे, करोड़ों करोड़ों गायों को अगिनत आकाश के तारों को गिन सकते हैं,
क्योंकि
गाय को दान दी गई तो कोई नहीं दी। स्वर्ण जवाहरात के पहाड़ों से पहाड़ दान कर दिए, किंतु हुआ क्या? थोड़ी सी चूक में, उनकी चूक नहीं थी, उनकी चूक नहीं थी, किंतु कुछ ब्राह्मण लोग, कुछ स्वार्थी ही ब्राह्मण कहे जाएंगे, स्वार्थी ब्राह्मणों की चूक से उस बेचारे महाराज जो परोपकारी थे, एक देवी आदि संपत्ति, जाओ गिरगिट बन जाओ, कितने वर्ष के लिए, सब्जी की बात और हो गया द्वापर, कितने करोड़ वर्ष बीत गए, गिरगिट बनकर की कुएं में पड़े रहे। फिर थोड़ी सी उन्होंने एक अच्छी भी बात की, गाय के दान के समय में कोई ब्राह्मण उनके पास नहीं, या कोई भक्त आया, ब्राह्मण नहीं भक्त आया, और उसने कहा महाराज आप बड़े दानी हैं, आप कृपा करके हमको एक भागवत की पोथी दे सकते हैं? मैं लिख नहीं सकता, मैं भागवत का वो लिख करके जो बना लू वो संभव, आप मुझसे किसी से लिखवा करके मुझको दान कर। उन्होंने दया करके भागवत को लिखवा करके सोने के सिंहासन पर और रेशम से उसको रख करके और उनको दान कर। उसका फल हुआ जो कृष्ण के चरण कमलों का, उसी समय में कुएं में बैठे हुए ग्रीक को क्लास मैंने स्पर्श किया और वो अपने स्वभाव में, अरे आप कौन हैं? मैं महाराज मृग आपकी पूर्व मंत्र, मैंने इतनी दान की है जो पृथ्वी का ऐसा कोई नहीं होगा जो हमको नहीं जानता होगा, किंतु थोड़ी सी चूक हो जाने से आज मेरी ये कथा, मैं कहने कौन जान पूर्व जन्म का कोई ऐसा करके, जो आपके चरणों का ये स्पर्श मिल गया तो मैं बच गया, मानी तो मैं जाने क्या होगा। इसलिए कभी 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 हम देखते हैं सांसारिक उपकार भी कभी अपकार के रूप में बदल जाता है। आपने किया उपकार न, और किसी ने उसको उपकार तो समझे नहीं और आपको दे दिया विषमता, ये जगत की नीति है। इसलिए संत लोग क्या करते हैं, वो वशिष्ठ के सुना गया और कहा जी ये गैया मुझको दे दीजिए, गैया दे दें, क्या करूं, हाँ कहूं या न कहूं, जब कहता हूं ना तो ये उत्पाद करें और यदि दे दिया तो मैं मर जाऊंगा इसके लिए, चुपचाप है इतने गैया ने उनका राक्षस ही है, ब्राह्मण का भेद बना करके आया है आपको ठगने के लिए, आप कभी भी इसको मत दें, मैं इसके बात में नहीं जाऊंगी। तो जो करके उसकी रस्सी पकड़ करके फेंकने लगा, तब उनकार किया, उनका से डर गया, कहे जाओ तुम अभी बछड़े बन जाओ और कल कौन सा कष्ट भोग करो। वही बछड़ा बन गया किंतु उसको माँ का बैठा ही बना, वो तो भूल गया किंतु जो हमारे आकृष्ण की शक्ति वो भूली नहीं। आज वही कंस के दरबार में उठा के पान का बीड़ा उठाया, आज मैं उसे मारने के लिए जाऊंगा। जब बीड़ा उठा लिया कंस को बड़ा आनंद हुआ और उसको गले से लिपटा दिया, प्रज भाई तुम ही हमारे मित्र हो, ये काम हुआ। जब कृष्ण ये कंस जबकि विश्व विजय के लिए निकला तो ये बछड़े के रूप में अशुभ के रूप में था, दोनों में क्षमा शांति हुआ, कभी कभी कंस इनको पटकता था, कभी ये उसको पटकता था। जब बराबरी पर छूटा तो कंस ने हाथ जोड़ दिया और कहा आज से आप मेरे कथान काम बराबर से मित्रता करनी चाहिए, बड़ों का अनुगत स्वीकार कर लेना चाहिए और नीचे वालों को राजनीतिक अनुसार में उनको दबा करके मारपीट करके अपने वशीभूत कर करके अपना बना लेना चाहिए। ये सब राजनीति है, बस उसको मित्र बना लिया। आचार्य मित्र इतने दिनों की मित्रता का फल तुम कम उनके लड़के को नंद के लड़के से बात करते हैं। वो गया वहां गायें चल रही थी, कृष्ण अपने बच्चों के साथ में खेल रहे थे और इतने में ये बछड़े का भी सुना कर सुदकता वहां गया। जहां पर वो जाए वहां पर बछड़े सब सुदक जाए, उसके शरीर से गंध आ रही। कोई कोई ऐसे होते हैं जिनके पसीने में बड़ा दुर्गंध, जिनके चट्टी में बड़ा भारी दुर्गंध, जिनके मुख से बड़ा दुर्गंध आता होता है और किसी के मुख से सुंदर सुगंध, पसीने से भी सुंदर सुगंध निकलता है। कुछ परम गंधा कुछ स्त्रियों के लिए ऐसा वर्णन किया गया, पुरुषों के लिए भी वर्णन किया गया। कौन स्त्री कौन किस्म की है, कौन पुरुष किस किस्म के हैं, उसमें इसका जिसके पसीने से सुंदर सुगंध आया है उसको उत्तम कोटि कहना है। तो इससे शरीर से सुगंध आ रहा है और बच्चे सुदक करके भाग रहे हैं, भयानक उसका रही है, आंख लाल लाल जल रही है। कृष्ण ने कहा कि ये क्या, सब बच्चे बिदक रहे हैं। असुर अपना जितना भी भाव छिपाए, बदमाश लोग अपने को जितना भी साधु बना करके आए, किंतु असाधुता कहीं ना किसी न किसी रूप में जरूर प्रकट की जाती है। विशेषकर वे जो भी हैं वो समझ जाते हैं। कृष्ण ने बलदेव की तरफ इशारा किया, देखो तो इसको पहले कभी आपने देखा तो नहीं, तो नहीं कभी नहीं, ये कहां से आया, नहीं नहीं ये कब घुस गया इसकी, समझते नहीं ये कौन है। हमें तो मालूम पड़ता है कि ये कंस का कोई छत मवेशी चल है, हम लोग को मारने के लिए आया, सावधान रहा जाए। कृष्ण ने कहा यह आदेश दे दीजिए, ये दास उसको जरा अच्छी तरह से शिक्षा दे। बलदेव जी ने कहा कि सावधान तुम रहो, मैं इसको छोड़ता हूं। उन्होंने भी आप भैया आपको जब मैं ही छोटा सा काम कर सकता हूं तो आपके आपको आपके लिए आप जरा देखते रहिए। बस कृष्ण एक बछड़े को पकड़ करके और गले से लिए, फिर दूसरे से लिए, तीसरे से लिए, बढ़ते गए जिधर वो आया, बढ़ते 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 गए। वो भी समझ लिया कि मेरे पास आ रहा है, वो भी तैयारी और साथ में है, झट दोनों पैरों से निकल करके मार। कृष्ण ने कहा अच्छी बात, बस पैरों को पकड़ लिया, अब मैं नहीं छोड़ता तुझे, तू आ गया तो आई गया, अब मैं तुम्हें किसी स्थिति में नहीं छोड़ूंगा। पैरों को पकड़ करके और दो चार बार घुमाया, प्राण निकल करके पकड़े हुए, आंखें निकल आई, गोबर और मूत्र करता हुआ वहीं पर देर बने, बच्चे सब ताली बजाने लगे, उसका अशुभ स्वभाव प्रकट हो गया। अब यह बात जाकर के जो सुधा मैया से सब बच्चे कर रहे, आज से इसने एक बच्चा सुना। इस प्रकार से ब्रज में लीला करते हुए कृष्ण बड़े होने लगे, लीलाएं भी पढ़ने लगी, इसके साथ साथ में और भी लीलाएं चलने लगी। आज यही सब है, कल से खूब प्रसन्न सुनिए, सोना चांदी का काम करो, बिजनेस करो, विवाह शादी करो, घर बनाओ और सब सब काम करो, और इस महीना में कुछ मत करो। अच्छा मैं नहीं कहता कि कुछ मत कीजिए, किंतु 12 घंटे 24 घंटों में से एक घंटा तो दे दीजिए, ये पुरुषोत्तम महीने के लिए डेट जितना भी काम आए, जीवन भर काम खत्म नहीं होगा। और उसमें यदि ये काम थोड़ा सा नहीं कर लिया ठाकुर जी का, तो वो काम करके ही क्या होगा बेटा का, वो वर्ष काम जो कोई आपके किए हुए उपकार को नहीं मानेगा। लड़के नहीं कहीं है, ये पिताजी ने कमा धमा करके ये दुकान दे दिया, उनका ऋणी रहना चाहिए, हमारे समझ में आप कैसे लड़के को नहीं पाएंगे, कहेंगे पिताजी ने ठग दिया हमको, कुछ कम दिया उसको अधिक दिया। वो जरूर कहेंगे जितना ही आप कमा करके दे दीजिए, और बूढ़े हो जाने पर आपके हार को भी रगड़ कर उसमें से निकाल रहे थे अंत तक वो बैठे तो उससे पहले ही हम लोग इस हरि कथा सुने, अपना परमार्थ भी करें, उनका भी कल्याण हो, अपना विकास। अंततः ये 13वें महीने में जो महीने के अंदर नहीं आता, काल के अंतर्गत नहीं आता, इस पुरुषोत्तम महीने में थोड़ा सा भी हम लोग यदि भगवान के लीला कथाओं के शरण में जाएंगे, अनायासी भव सागर कब हम पार हो गए, चुटकी बजाते ही जब उस पार जाएंगे तो देखें अरे मैं पार होकर के घर आ गया।